तफसीर देखेंगे आयत नंबर 148 से, और यहाँ से छठे पारे का आगाज़ भी है। बहुत ही खूबसूरत आयत है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूई मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम वकानल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं कि किसी बुरी बात को ज़ाहिर करके बयान किया जाए, हाँ मगर जिस पर ज़ुल्म हो, और बेशक अल्लाह ताला सुनने और जानने वाला है। बुरी बात को ज़ाहिर ना करें, और फिर इसके अलावा और क्या हुक्म है, इसका तज़किरा अगली आयत में है। इन तुब्दु खैरन औ तुख्फूहु औ ताफू अन सूइन फ़इन्नल्लाहा काना अफूवन क़दीरा। अगर तुम खोल कर करो कोई भलाई, या इसको छुपाओ, या मुआफ़ कर दो बुराई को, तो अल्लाह भी माफ़ करने वाला बड़ी कुदरत वाला है। आयत का आगाज़ है ला युहिब्बुल्लाह से। अल्लाह मोहब्बत नहीं रखता, पसंद नहीं करता। इससे पहली बात तो ये पता चलती है कि अल्लाह ताला मोहब्बत भी करता है और अल्लाह ताला नफ़रत भी करता है। इंसानों के अमाल कुछ इस काबिल होते हैं कि उसकी वजह से अल्लाह ताला इंसानों से मोहब्बत करें, और कुछ अमाल इस किस्म के होते हैं कि जो बंदे को अल्लाह ताला की नफ़रत का मुस्तहिक कर देते हैं। जिस बंदे के दिल में अल्लाह ताला से मोहब्बत होगी ना, वो तो बस ला युहिब्बुल्लाह के लफ्ज़ को सुन के मचल उठेगा और बेचैन होगा कि कौन सी चीज़ है जिससे मेरा रब मोहब्बत नहीं करता। क्योंकि जब मोहब्बत नहीं होगी तो फिर नफ़रत होगी। एक मोमिन की ज़िंदगी का सरमाया अल्लाह की मोहब्बत होती है। वो अपनी ज़िंदगी से हर उस चीज़ को निकालना चाहता है जो उसको अल्लाह ताला की मोहब्बत से दूर कर दे। और जो बंदा अल्लाह की मोहब्बत से महरूम हो गया, वो हकीकत में बदतरीन लोगों में हो गया। यहाँ किस बात को अल्लाह पसंद नहीं करता? अल जहर बिस्सूई, पुकार कर कहना बुरी बात का, मिनल कौली बात के ज़रिए, कि इंसान इंसानों में रहते हुए अगर किसी की कोई बुराई देखे, किसी में कोई खामी देखे, तो उसका इश्तिहार ना बने, उसको इस तरह दूसरों के अंदर नशर ना कर दे कि वो किसी को शक्ल दिखाने के काबिल भी ना रहे। इस्लाम दीन फितरत है, और ये सलामती वाला दीन है, अमन वाला दीन है, इस्लाम वाला दीन है। इसके अंदर जब कोई बंदा दूसरों के लिए फितने का और आजमाइश का ज़रिया बन जाता है, अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करते। देखा जाए तो इस आयत का पीछे वाली आयतों के साथ ताल्लुक भी है। हमने पिछले पारे में कुछ बातें मुनाफिकीन और यहूद के नाते से पढ़ी थी कि कैसे वो मुसलमानों के लिए फितने खड़े करते थे। इसी में हमने देखा था पिछली आयत में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िलों में आते और फितने उठाते और इस तरह से बातें निकाल देते कि जो वहाँ ना हुई होती। इन आयात को अगर हम पीछे वाली बातों से निकाल के देखें तो इससे मुराद कुफार और मुशरिकीन और मुनाफिकीन और हर दौर का हर वो इंसान जो इस्लाम के मामले में संजीदा नहीं है। जिसने बज़ाहर अगर इस्लाम को कबूल कर भी लिया है तो वो बस उसका एक ज़ाहरी मामला है, अभी दिल की गहराइयों में वो इस्लाम नहीं आया। तो ऐसे लोग फिर इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें निकालते हैं। कल भी इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें निकलती थीं, आज भी निकलती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर तारीख को खंगालते जाइए, आज तक यहूद और नसारा ने इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत बातें की। अल्लाह के नबी के सामने भी करते थे, आज भी करते हैं, और कल भी था और आज भी था ये मामला। अल्लाह ताला मुसलमानों को इस बात का यहाँ यकीन दिलाते हैं कि अगर कोई तुम्हारे इस्लाम को बुरा कह भी ले, तुम्हारे नबी को बुरा कह भी ले, तुम्हारे दीन को दूसरों की नज़रों में फ्लूट करना भी चाहे, लेकिन अल्लाह इन सारी बातों के बावजूद ये पसंद नहीं करते कि तुम भी बदले में उनके साथ ऐसी ही बातें करो। और इस बात को आप देख सकते हैं कि गया गुजरा ही दौर क्यों ना हो, इस्लाम आज कोई अपने बहुत ज़्यादा अरूज से नहीं गुजरा, इसके बावजूद इस चीज़ पे तारीख गवाह है कि जब भी लोगों ने इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात की या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ख़िलाफ़ कोई बात की, तो अल्लाह के नबी के मानने वालों ने कभी दूसरे दीन वालों को बुरा नहीं कहा। मसलन अगर कोई अल्लाह के नबी को बुरा कहे तो जवाब में किसी ने हज़रत ईसा को बुरा नहीं कहा, हज़रत मूसा को बुरा नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि यही है इस्लाम की तालीम। इस्लाम की जो अखलाकी तालीमात है ना, उनको कोई भी زیر نہیں کر سکا۔ اس میدان میں اسلام ہمیشہ غالب رہا، ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ان کے نبی ہیں وہ ہمارے بھی نبی ہیں۔ کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک لفظ بھی بولے، حضرت موسیٰ کے خلاف بولے؟ اسی لیے اس آیت کی اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ نبیوں کے معاملات ہیں۔ بظاہر یہ آیت اگر بالکل سمپل معنوں میں لی جائے تو یہاں زبان کے استعمال کا صحیح طریقہ سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ انسان کی زبان ہی وہ چیز ہے جو انسان کو دوسروں کی نظروں میں بھی یا اچھا بناتی ہے یا برا بناتی ہے۔ اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر طرف کوئی نہ کوئی کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں ظلم اور زیادتی کو مٹانے کا آفاقی نسخہ دے دیا کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے دنیا سے ظلم ختم کرو، زیادتیاں ختم کرو، لیکن ان کے قانون کامیاب نہیں ہو پاتے کیونکہ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اتنا پیارا قانون دے دیا کہ تم برائی کو ظاہر کرنے کی بجائے چھپا دو۔ یہاں لفظ جہر ہے، اس پہ غور کریں تو بہت ساری حقیقت کھلتی ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، زور سے کہنا، کھولنا، کھلم کھلا کہنا، شہرت دینا۔ اسی سے جہری نمازیں بھی ہیں جو فجر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں جماعت کے ساتھ، تو اس میں سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد کی جو قرأت ہے وہ پہلی دو آیتوں میں بلند کی جاتی ہے، تو ان نمازوں کو جہری نمازیں کہتے ہیں۔ یہاں مراد کیا ہے کہ کسی کی برائی کے اوپر زبان نہ کھولو۔ اب دیکھیے کہ انسانوں کے اندر بہت ساری اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں اور بری باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب لوگ دوسروں کی برائیوں کو یوں اچھالنے لگیں کہ شاید خود تو وہ فرشتے ہیں یا انسانوں میں وہ انسان ہے جنہوں نے کبھی غلطی نہیں کی، خرابی نہیں کی، تو کبھی بھی دنیا میں اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے کسی کے گھر سے کوڑا کرکٹ اٹھانے والی جو گاڑی ہے وہ وہاں سے کوڑے کو لے اور پوری سڑکوں میں پھیلاتی جائے، زیادہ تعفن پھیلے گا یا کم؟ پہلے تو وہ گھر کے اندر ڈھکا ہوا تھا نا، اب کھل گیا۔ جس طرح سڑک کے اوپر گندگی پھیل جائے تو جراثیم پھیلتے ہیں، اسی طرح جب لوگوں کے ڈھکے ہوئے معاملات، چاہے بدگمانیوں کی وجہ سے ہوں یا صحیح گمانی کی وجہ سے ہوں، اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کو کھول کے سر عام نشر کر دیا جائے اور اس کے اشتہار بنا کے ساری دنیا کو وہ برائی دکھائی جائے کہ دیکھو یہ برائی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے مزاج گندے ہو گئے، ہماری سڑکیں، ہماری گلیاں، ہمارے گھر گندے، ہماری نگاہیں گندی ہو گئیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آج کے دور میں اسکینڈلزم عام ہے، وہ سیاسی لیڈرز ہوں یا کرکٹرز ہوں یا گلوکار یا اداکار ہوں، اور مذہبی رہنماؤں کے تو اسکینڈلز نہیں، ان کے اوپر تو بہتانات لگانے اور الزام تراشی کو بھی بعض لوگ سراسر دین کہتے ہیں، سراسر فتنہ پھیلا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام ہم اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، ہم استخاروں کے ساتھ کر رہے ہیں اور ہم یہ کام کر کے ساری دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ کیا خرابی ہے۔ وہ کام تو کیا کریں گے، پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ طریقہ کیا اختیار کیا۔ اس کو ایسی سمجھے کہ جیسے کوئی کمپنی اس چیز کا ٹھیکہ لے لے کہ میں اس سارے شہر کی گندگی کو ختم کر دوں گی یا کر دیں گے، یا ہم پورے شہر کو جراثیم سے پاک کر دیں گے، لیکن کام کرنے کا طریقہ ایسا ہو کہ ڈھکے ہوئے کو بھی پھیلا دے اور جو تھوڑا تھا اس کو بڑھا دے، اور اس طریقے سے گندگی پھیلائیں کہ جس کے نتیجے میں بیماریاں بھی پھیلنے لگیں، وہ لوگ جو پہلے اس گندگی سے بچے ہوئے تھے اب اور اس کا شکار ہونے لگیں، تو پھر آپ ایسی کمپنی کو کبھی بھی آپ صفائی والی کمپنی نہیں کہہ سکتے۔ انسان یہی چیز سے پہچانا جاتا ہے۔ کوئی انسان دوسرے کے ساتھ جب کوئی معاملہ کرے اور یہ بھول جائے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو میں اس وقت اس کو کیسے ٹیکل کروں گا، یہی ہے اصل میں وہ سوچ جو اس آیت میں دی گئی۔ الا من ظلم، ہاں مگر کسی پہ ظلم ہو گیا۔ اس کی تفسیر میں بہت سارے مختلف اقوال آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ظلم کو عام لفظوں میں ظلم لیجئے، کسی نے کسی پہ ظلم کیا، اب اس ظلم کی داستان وہ جا کے ایسی جگہ بیان کرتا ہے جہاں ظلم ہوا، اس کو روک لے، بتا دے کہ آپ کس عمل سے مجھ پہ ظلم ہوا، یہ ہے بہترین طریقہ۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کہ ردوہا الی اللہ و رسول و اولی الامر منکم، کوئی معاملہ پھیلے، کوئی بات سنی جائے تو اس کو ادھر ادھر کرنے کی بجائے بہترین طریقہ کیا ہے کہ اس کو اس بندے تک پہنچا دیا جائے، اور تعلقات میں اتنی گرم جوشی ہونی چاہیے، ساتھیوں کے اوپر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ اگر کسی میں کوئی غلطی دیکھے تو وہ اس کو ٹوک سکے۔ اگر لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ٹوک سکتے تھے تو کیا آج کے حکمرانوں کو نہیں ٹوک سکتے؟ کیا وہ آج عمر سے بڑے ہو گئے؟ کیا اگر اس دور میں बड़े बड़े लोग लोगों की निगाहों में आ जाते थे, तो क्या आज के मशहूर लोग नहीं आएंगे? आएंगे। मकसद अगर ये हो ना कि बुराई ख़त्म करनी है, तो फिर तो वो फ़ौरन उसके पास आएगा, एक्सक्यूज़ मी करेगा, और बड़े अदब अदाब के साथ वो बात सदर के सामने भी रख देगा, वज़ीर के सामने भी रखेगा। चले उन तक अप्रोच नहीं होती तो उनके नॉमिनेटिव्स को दे दे। ये तो दुनियावी गंदगी की बात है ना। इसी तरह हमारे यहाँ एक और मारूफ कल्चर हो गया जो इंतहाई तकलीफ दे, और वो कह के दीनदारों पर कीचड़ उछालें। और उसके लिए बेस्ट वे आज के दौर का है वो नेट। ईमेल्स के अंदर आपको क्लिप्स भेजे जाते हैं कि ये देखिए फला आलिम स्पीच में कितनी ज़यीफ़ रिवायत कर रहे हैं, और दिस एंड दैट। शायद ही कोई महीना जाता होगा कि किसी का कोई ईमेल मुझे ना जाता हो। और वो लोग जो लोगों के दिलों पे छाए होते हैं, लोगों के जहनों पे छाए होते हैं, उनकी बातों को नशर किया जाता है कि देखें ये कितनी बुरी बात कर रहे हैं। मैं उस वक्त सोचती हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लम ने तो कभी इश्तहार नहीं बांटे कि देखो देखो अबू जहल इस्लाम के ख़िलाफ़ क्या कर रहा है, देखो अबू लहब ने ये जुमला बोल दिया। नहीं कह रहे, ये तरीका ही नहीं है। कोई बिद्दत करे, कोई ज़यीफ़ रिवायत पेश करे, कोई एग्जेजुरेशन करे, कोई दीन के नाम पे शिर्क फैलाए, इस्लाम वालों का ये मिजाज ही नहीं है कि उसको सरेआम लाए। उस बंदे को पता है कि नहीं जिसने ये काम किया? लोग कहते नहीं हमने उनको कहा, वो मना नहीं हुए, तो हमने सोचा कि लोगों को इनके फितने से दूर कर दें। तो क्या हो गया फितना दूर? कभी भी नहीं होता। ये इंतहाई नापसंदीदा तरीका है। आप अपने निजी मामलात में इसको ला के देखें। अगर बीवी में कोई ख़राबी हो, शौहर रहना चाहता है उसके साथ कि नहीं, पहले ये देखे। अगर वो उस बीवी की सलाह चाहता है तो क्या करेगा? पूरे ख़ानदान की महफिल में बैठ के बुराई की बात कर देगा, ये बड़ी बुरी है, ये बड़ी ख़राब है, ये खाना नहीं पकाती, ये घर नहीं साफ़ करती। क्या मसला हल होगा? पहले तो बीवी कम करती थी ना, अब इस जुमले को सुन के उसको शौहर से हो सकता है नफरत ही हो जाए कि ये कैसा मेरी इज्जत और बेइज्जती का साथी है कि जो सारे घर में मेरी बुराई कर रहा है। तरीका क्या है? आराम से, प्यार से, मोहब्बत से बात की जा सकती है कि बेगम आप ऐसा नहीं, ऐसा करें, मुझे आपकी ये आदत नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, ठीक कर ले आपस में मामले। क्या बड़ी बात है? क्या दुनिया का कोई इंसान ये कह सकता है कि मेरे अंदर कोई खराबी नहीं, या मैं हर रिश्ते में पूरी हूँ? कभी हो ही नहीं सकता। वो तो अल्लाह की ज़ात है, वो पाक ज़ात वो है। इसलिए यहाँ फरमाया कि अगर कोई ऐसी बात करेगा तो समझ ले कि वो खुद दूसरों को इस बात की गवाही दे रहा है कि मैं ही नॉन सीरियस हूँ और नॉन सेंस किस्म का इंसान हूँ। और ऐसा शख्स अपने नाम अमाल को गुनाहों से भर लेता है, क्योंकि जब दीन के नाम पे ये फितने फैलते हैं ना, तो लोगों का दीन वालों पे एतमाद उठ जाता है। असल जो आम करने की चीज़ है ना, मैं कहती हूँ अल्लाह के बंदों, अगर ई मेल्स आम करनी है ना तो इल्म वाली किया करो। आज हमारा मिजाज इल्म वाला नहीं रहा। याद रखिए, किसी को बुरा भला कहने से, या मैं यहाँ आऊँ क्लास लूँ और थोड़ी बात करो और मैं आपको कहूँ देखिए वो फलां आलिम है ना, ज़रा बच के रहिएगा, वो ये नहीं सही करते, वो फलां आलिम है, वो ना करें, आप मुझे बताएं कि आपको इन सारी बातों से क्या फ़ायदा होगा? आपका दिल टूटेगा। आप सोच रहे होंगे कि अच्छा फलां, उसको तो मेरे शौहर बड़े शौक से सुनते हैं, फलां वो तो मेरे बच्चों का फेवरेट है, फलां तो फलां। आप यहाँ से कौन सा दिल लेके उठेंगी? बोझल दिल लेके उठेंगी, कन्फ्यूजन वाला दिल लेके उठेंगी। घर जाएंगी ना, ना चाहते हुए भी आपके मुंह से अपने शौहर के सामने उस दीनदार की बात निकल जाएगी जिनको वो बड़े शौक से सुनते हैं, लेकिन मैंने उनकी बुराई की। आपके शौहर सुन के एकदम मान जाएंगे कि बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपका भी और आपकी उस्ताद का भी कि उन्होंने मुझे आईना दिखा दिया? कभी नहीं मानेंगे, वो मुझे गाली देंगे, कहेंगे आराम से बैठो, तुम कहाँ जाती हो, तुम्हें ऐसी बातें ये सुनाती हैं। चाहे वो बात 100.1% भी ठीक होगी ना, वो कभी नहीं मानेंगे। क्या इतनी देर का एतमाद एक दिन में ख़त्म हो जाता है? तरीका क्या है? असल चीज़ है जिसको वो आम करना है, वो इल्म है। अवेयरनेस दीजिए, हक दिखा दें, लोग खुद ही बातिल को देख लेंगे। हमारा मिजाज क्या है कि हक को तो पीछे करके बातिल के चेहरे दिखाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला को इंतहाई नापसंद है। इनसे जो माशरे में गंदगी और बदबू फैलती है ना, वो आज के दौर में फैली हुई है, लोग दीनदारों के खिलाफ, दुनियादारों के खिलाफ। फिर इसी तरह आप देखिए इसके डिफरेंट एंगल है। सिर्फ इस एक आयत को अगर हम देखते रहें तो इसमें कई मुख्तलिफ एंगल हैं। निजी ज़िंदगी, माशरती ज़िंदगी, इज्तमाही ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी, काम करने वालों की ज़िंदगी। जहाँ चार लोग मिल के काम करते हैं वहाँ एक यूनिट बन जाता है। घर भी एक यूनिट है, मदरसा भी एक यूनिट है, इदारे भी एक एक यूनिट होते हैं। कहीं किसी में कोई बुराई देखी, सबसे पहली बात क्या है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम उसको साहिब मामला तक ले आओ, उसको सजेशन दो, उसको मीटिंग में बात करो, उसको अच्छे तरीके से बात कहो। हाँ, अगर वो ना माने, ना सुने, फिर अगला स्टेप लिया जा सकता है। एक शख्स था नबी सल्लम के दौर में, आपके पास आया और कहने लगा कि मेरा एक हमसाया है और मुझे बड़ी तकलीफ़ देता है और मैं उसके शर से बड़ा थका हुआ हूँ, बड़ा परेशान हूँ। अल्लाह के नबी ने उसको समझाया बुझाया, खैर मामला बढ़ा, एक दो तीन बार ऐसा हो गया कि वो आदी था वो शख्स उसको तकलीफ़ देने का। जब आपके पास वो शख्स दोबारा आए तो आपने कहा कि अब तुम ऐसा करो कि अपने घर का सामान निकाल के बाहर गली में रखो और पास बैठ जाओ, बस और कुछ ना करो। वो आके बैठ गया। अब एक शख्स पास से गुजरा, रहे भाई साहब क्या ख्याल है, ये क्या हुआ, सामान क्यों निकाला है? कहा नहीं बस कुछ नहीं, वो ज़रा हमसाया तकलीफ़ देता है। वो चला, कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी बात कर दी। अब वो चला, अच्छा आपको तकलीफ़ देता है, आप तो बड़े अच्छे हैं, आप तो बड़े बेज़रर हैं। कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, बस आप अपना काम करें। वो चला गया। फिर दूसरा आया, तीसरा। थोड़ी देर गुजरी, सबके अंदर ये बात फैल गई कि ये शख्स फलां के जुल्म की वजह से बोरिया बिस्तर लपेट के जा रहा है। अब ये बात होती होती उस हमसाए तक भी पहुंच गई, जिसके बारे में ये बात होती, फौरन इनके पास आया, कहने लगा मुझे माफ़ कर दें, मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं आपको तंग करता था, आप चलिए वापस, मैं आपका सामान उठवाता हूँ और मैं आपको आज के बाद तंग नहीं करूँगा। मसला ख़त्म, वापस आ गया और खुशी खुशी दोनों रहने लगे। अब देखिए ये है इल्ला मन जुल्म की एक तफसीर। किसी पे कोई ऐसा जुल्म हो कि जो वाकई नाकाबले बर्दाश्त है, तो फिर उसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि जिसकी वजह से मसला जो है वो हल हो जाए। इसी तरह इल्ला मन जुल्म के अंदर एक और चीज़ आती है, और वो क्या है कि कोई किसी के घर मेहमान बन के गया और उसने मेहमानी का हक नहीं दिया। और आज के दौर में होटल और मोटेल्स और बहुत सारे सबवेज मौजूद हैं, कोई खाना नहीं खिलाएगा तो जाके मेहमान बाहर से खा लेगा। जिस दौर में ये आयतें नाजिल हो रही थी उस वक़्त तो बाहर कुछ भी नहीं मिलता था। मेहमान किसी को अगर सही नहीं खिलाता पिलाता तो बाज़ दफ़ा वो उसकी जान लेने के बराबर हो जाता था। ऐसी सूरत में अल्लाह के नबी की मुख्तलिफ रिवायात का जो खुलासा आपको बता रही हूँ, आपने कहा कि फिर तो मेहमान की अगर हक तलफी कोई करे तो मेहमान मेज़बान से उसका हक ले सकता है। अगर उसका तذکرہ कहीं होता है इस बारे में कि मैं गया और उसने मेरी इस तरह से मुझे खाना नहीं दिया, तो इसकी रुख्सत मौजूद है। यानी नीचे के दर्जे में ये बात कर दी, लेकिन उसमें फिर बढ़ा चढ़ा के बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी तरह एक रिवायत में आता है कि जिसने बददुआ की जालिम के हक में, उसने अपना बदला ले लिया। यानी जालिम ने जुल्म किया, आप मजलूम बन गए, मजलूम बने तो अल्लाह ताला के करीब हो गए, अर्श के ऊपर आपकी आहें जाएंगी, आप मजलूम हैं, कितने फ़ायदे में। लेकिन जूँ ही आपने कहा अल्लाह इस जालिम को पकड़ ले, इसको मार दे, इसको गर्क कर दे, डबो दे, तो कहा कि बस आपने बदला ले लिया, अब आप मजलूमियत की कैटेगरी से निकल आए। कौन सा अमल पसंदीदा है, पहला जिसमें अल्लाह की मदद उतरे या दूसरा जिसमें कुछ ना उतरे? हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि मैं इस बात पे शुक्र करता हूँ कि मैं मजलूम हूँ, जालिम नहीं। यानी जब कोई मुझ पे जुल्म करता है तो मैं अपने आप को खुशी में महसूस करता हूँ कि शुक्र है मैं तो किसी पे जुल्म नहीं करता। तो लिहाजा अगर किसी के साथ मामला कर दिया जाए तो ठीक है, इजाज़त है, पहले दर्जे में रुख्सत है। वकान अल्लाहु समीअन अलीमा, अल्लाह को खूब पता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिल क्या है, तुम्हारे हालात क्या हैं, वो तुम्हारी दुआओं और बददुआओं को सुनता भी है, तुम्हारी ज़ुबान से निकले हुए एक एक लफ्ज़ को वो सुन रहा है, उसके इल्म से तुम बाहर नहीं हो। इन तुबदू खैरन, हाँ अगर तुम खैर को खोल कर बयान करो, पीछे क्या था, बिसुई मिनल कौली, वहाँ जहर के साथ बुराई को जाहिर करना बुरा पसंद किया गया, यहाँ उसका अपोजिट बताया जा रहा है कि किसी में कोई खूबी देखते हो। इन तुबदो खैरन, बहुत अच्छी बात है, किसी की खूबी है, कोई उसके अंदर नेकी की चीज़ देखते हो, उसको जाहिर करो, खोल के बयान करो, या औ तुखफू हो या तुम उसको छुपा लो। किसी की तारीफ बयान करने का हौसला नहीं बनता तो छुपा लो, ना करो किसी से, मत जुबान खोलो, तुम्हारा इतना हौसला ही नहीं कि किसी को एडमायर कर सको, किसी की तारीफ कर सको। क्योंकि जो लोग अपनी ज़ात में खोए होते हैं वो दूसरों की तारीफ भी नहीं कर सकते। ये उसे दूसरा दर्जा है कि चलो कम से कम किसी करने से तो बेहतर है कि तुम उसकी खूबी ना बयान करो, या फिर उसको छुपा लो, औताफ़ अनसु, माफ़ कर दो बुराई को। यानी किसी में अगर कोई बुराई देखते हो तो दरगुजर करो, जाने दो। फ़इन्नल्लाह कान अफ़ुवन क़दीरा, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला कुदरत वाला है। तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, तो क्या फिर तुम दूसरों को माफ़ नहीं करोगे? देखिए वो चीज़ जो हम हर वक्त अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं, माफ़ी मांगते हैं ना। कोई बंदा ऐसा है जो कि मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, मैं इस्तग़फ़ार नहीं करती, कोई भी नहीं होगा एक। तो बताइए जो चीज़ हम मांग रहे हैं कभी हमने भी दूसरों को दी? कितना माफ़ करते हैं लोगों से, लोगों को कितना दरगुजर करते हैं, कितना उनकी बातों पर सब्र करते हैं, कितना हम उनके बारे में अच्छा ख्याल रखते हैं। अब देखिए, मक्की दौर में जबकि मुसलमान जुल्म का शिकार थे, बेहतरीन इखलाक सिखाया जा रहा है कि बात का बतंगड़ ना बनाया करो, चीज़ों को जेबे दास्तान ना बना दिया करो, जिस बात पे काबू रखो, अपनी कहानियाँ बार बार सुनाकर ना अपना वक्त ज़ाया करो ना दूसरों का करो। बस लोग कभी जख्म भरने ही नहीं देते। 5 साल पहले कोई चोट पड़ी थी, किसी ने कोई जुमला बोला, कहते हैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी, ये तो कब्र की दीवारों तक मुझे सास के जुमले भूलेंगे नहीं जो उसने मुझे शादी के शुरू में कहे। तो ना कीजिए, उसका क्या गया, जख्म आपके नहीं भरेंगे। जब जख्म भरते नहीं है ना तो हरे रहते हैं, फिर आप उसको दोहराएंगे, फिर वो यादें आएंगी, फिर खून रिसेगा, फिर चिपकेंगे, और नतीजा क्या निकलेगा कि आप हमेशा दुखी रहेंगे। ये पसंदीदा अमल नहीं। बंदरों में ये काम होना तो बेहतर होता है। आपको था कि बंदर जब किसी बीमार बंदर की आदत को जाते हैं ना, तो खोल खोल के उसका जख्म देखते हैं, इतना उसको खोलते हैं कि उसके अंदर से खून निकलने लगता है। वो तो अकल से आरी लोग हैं, वो तो ऐसी मखलूक हैं कि जिनका दिमाग कितना छोटा है। इंसानों को कहा कि तुम तो ऐसे ना करो, हर राह जाते को अपनी दास्तान ना सुनाया करो, दरगुजर करो, कोई तंग करता है उसका हिकमत से इजाला कर लो। तो सारी बात का खुलासा क्या है कि जुल्म पर सब्र करना ज़्यादा बेहतर नतीजा लाता है बदला ले लेने से या ज्याती करने से। एक मौके पे हज़रत आयशा ने चोर को बददुआ दी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्यों उसका बोझ हल्का करती हो, यानी तुम्हारी बददुआओं से उसको यानी इससे फ़ायदा होगा। अगर कोई किसी की चोरी करे, कह दो अल्लाह पे मामला तेरा, क़यामत के दिन लूँगी तुमसे। वो उस पर तो सख्ती हुई और आपके ले गया, बर्बाद हो, लुट जाए, मर जाए, तो आपने उस पर ज्याती कर दी। ये ज़ुबान इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि जिसका हल्का सा इस्तेमाल आपके गियर या आपके एक्सीलेटर के गलत इस्तेमाल से ज़्यादा नुकसान लाता है। गाड़ी में आप ब्रेक की जगह एक्सीलेटर को दबा देना तो झटके से गाड़ी या रुकेगी या किसी से टकराएगी। इसी तरह ज़ुबान के अंदर भी बाज़ दफ़ा इस तरह के झटके आते हैं, इसको भी बाज़ दफ़ा रोकना पड़ता है, एकदम हैंड ब्रेक लगानी पड़ती है। तो इंसान को कंट्रोल करना चाहिए। हज़रत इब्ने उमर फरमाते हैं कि जिसने किसी मुसलमान की ऐब पोशी की, कल क़्यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी ऐब पोशी करेगा। क्या हम नहीं चाहते कि हमारे ऐब छुपें? कोई है हम में से जो ऐबों से पाक है? छोटे हों या बड़े, ज़ाहरी हों या बातनी, इंसान बचना चाहता है तो आज दूसरों के लिए इंसान खुशी का सबब बने। हदीस में आता है, सही मुस्लिम की रिवायत है, कि मुआफ़ करने से अल्लाह ताला बंदे की इज़्ज़त को बढ़ाता है। इसी तरह आपने फरमाया, जिसने जालिम के लिए बद्दुआ कर ली उसने बदला ले लिया। एक और रिवायत में आता है, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को मुआफ़ कर दिया बजुज़ उन गुनाह के जो वो खुद जाहिर करें। पूछा अल्लाह के नबी, वो कैसे? कहा, रात को गुनाह करते हैं और सुबह को अपने गुनाहों का प्रचार करते हैं, यानी खुद अपनी बुराइयाँ बताते हैं। इस्लाम कहते हैं अगर बुराई हो गई, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, छुपा दो, डंप कर दो, ये ट्रैश है, ये गंदगी है, इसको मत खोल खोल के पेश करो। क्योंकि आप देखिए कि घटिया अल्फाज जो ज़ुबान पे आते हैं ना, असल में ये घटिया सोच का नतीजा होते हैं। पहले बंदा बदगुमान होता है, फिर बदजुबान होता है। ज़ुबान कभी ख़राब नहीं किसी के लिए आपकी होगी अगर आपका दिल और आपकी सोच उसके लिए अच्छी होगी। फिर इसी तरह बुग़्ज़ की वजह से, हसद की वजह से, तकाबुल की वजह से, कुछ नफ्सियाती बीमारियों की वजह से लोग दूसरों के राह जाते दुश्मन बन जाते हैं। कभी तो आप सोचते हैं अल्लाह के बंदों को क्या मसला है, कोई किसी को कुछ कहता भी नहीं, कोई किसी के बारे में सोचता भी नहीं, इनको क्या मुश्किल पड़ी है? इनको ये मुश्किल पड़ी है कि ये खुद को दूसरों के यानी तकाबुल में लाना चाहते हैं। यानी मैं हैरान होती हूँ, और बाद चीज़ों पे तो इंसान बड़ा इंजॉय भी करता है। 2-3 दिन की पहले की बात है, मुझे किसी ने एक मैसेज दिया, यानी इंटरनेट पे जो हमारी क्लासेस होती हैं वो लोग ज़्यादा इसको समझ सकते हैं, मेरे ही नाम की आईडी बनाई हुई, यानी मेरी एक आईडी जो मैं ऑफिशियली यूज़ करती हूँ, सबको पता है, उसमें मेरा नाम भी आता है, साथ नूरुल कुरान का लफ्ज़ भी है। तो किसी ने पूरा इफ़त मकबूल की जैसा आईडी बना के तो लोगों को बेकार किस्म के मैसेज दिए हुए, खुद मेरा नाम और मेरे ही बारे में लिखा कि आप पता नहीं क्या लिखा। मैं तो हंसने ही लग गई जब मुझे किसी ने वो भेजा, तो मैंने कहा कि अल्लाह की बंदी नाम ही कोई और रख लेती, पढ़ने वाला एक लम्हे के लिए, बच्चे जितनी भी अकल होगी ना वो सोचेगा ये अगर इफ़त मकबूल खुद है तो क्या अपने बारे में ये कुछ लिखेंगे, कुछ तो लफ्ज़ लिखे। और मैं हंसी, मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है इन्होंने मेरी साथ पे किया, तो मुझे गुस्सा भी नहीं आया, इन पे दुआ ही निकली कि पता नहीं कितनी दुखी होंगी जिनको दिल में आई, और ऐसे किसी ने मजाक भी किया हो सकता है। लेकिन बस वही बात है ना कि दिल में किसी के कोई बात होती तो कोई कर देता होगा। तो इंसान इन चीज़ों पर सोचता है और मुहासबा करता है कि क्या वाकई दुनिया में कभी भी शैतान ये चीज़ पसंद कर सकता है कि खैर की बात पहुंचे। याद रखें, जहां खैर की बात होगी वहां लोग जरूर खुद नहीं होंगे। मैं तो समझती हूँ कुछ शैतानी चीजें ही ऐसी आगे आ जाती होंगी जो लोगों की अक्लों पे पत्थर रख देती हैं, पर्दे डाल देती हैं कि अल्लाह के दीन की तरफ तुम मत जाना। तो हम सब इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपनी ज़ुबान को पकड़ के खींचा करते थे, आगे से नोक से अपने दोनों अंगूठे और इसे पकड़ के बैठे हुए थे। हज़रत उमर फारूक पास से गुजरे, कहा अबू बकर ये क्या? कहने लगे ये बड़ी तेज़ घाटी हो गई है, इसको अपने काबू में कर रहा हूँ। यानी अबू बकर की ज़ुबान अगर तेज़ है, वो तेज़ घाटी है, तो मेरी और आपकी ज़ुबानें तो खींचने के काबिल होंगी। कभी किसी के बारे में कमेंट ना दें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, चलते हुए, राह चलते, शॉपिंग करते हुए, गाड़ी में, विंडो से बाहर देखते हुए आदत बना लें मैंने किसी के लिए कुछ नहीं बोलना। जो बहुत बोलते रहते हैं ना, हर वक्त खाली बर्तन होते हैं, अंदर कुछ भी नहीं, खोखले निकलेंगे। अगर आप चाहते हैं ना ये अल्लाह के कुरान का और दीन का नूर आपके अंदर जाए, तो पहले इस ज़ुबान को सीएं। इधर से निकल जाता है, जितना आप कुरान सुनेंगे ना, रोज़ घंटों के अतबार से आप सुन रहे हैं, ये आपकी ज़ुबान के रास्ते सारा निकल जाएगा। जैसे एक तरफ से एसी चल रहा हो और दूसरी तरफ से छोटी छोटी विंडोज़ खुली होंगी ना, तो कमरा कभी भी ठंडा नहीं होगा। हीट चलाएं और साथ विंडोज़ खोल दें, कमरा गर्म नहीं होगा। इसी तरह ये ज़ुबान जो है ना, और आंखें और कान, ये विंडोज़ हैं, ये हमारे ईमान के नूर को छीन देती हैं। आपको अगर अपनी ज़ुबान पे काबू आ गया ना, तो आप समझ लें कि आपने अपने दीन के एक बहुत बड़े हिस्से को महफूज कर लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नजा मन समत, निजात पा गया वो शख्स जो चुप रहा। जितनी खराबियां हमें इर्द गिर्द से पेश आती हैं ना, अपने ख़ानदानों में, माशरों में, आप देखेंगे 90% उसकी वजह हमारी ज़ुबान होती है, या हमारी ज़ुबान या हमारे कान। यानी या हम बोल रहे होते हैं ऐसी चीज़ें या सुन रहे होते हैं। पीछे हमने नजवा की बात की ना, कि कैसे नजवा के मामले इज्तमाईयत को तोड़ के इनफरादियत की सतह पर इंसान को ले आते हैं। अपनी बात पे इंसान इतना डरे कि अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसा मामला ना हो कि मेरी चार नेकियां भी ज़ाया हो जाएं, मेरी थोड़ी सी नेकियों की हरारत जो मैंने जमा की है कहीं वो मेरी ज़ुबान की भूखों से ही बुझ ना जाए। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि क़्यामत के दिन अल्लाह ताला एक बंदे को अपने करीब करेगा, इतना करीब करेगा कि उसके ऊपर अपना हाथ रख देगा। फिर अल्लाह ताला उसको पूछेगा, क्या तूने फलां गुनाह किया था? बंदा कहेगा जी किया था, फलां किया था, किया था। कहा बंदे के साथ ये मुहासबा हो रहा है और उसको डर है कि अब अल्लाह ताला उसको पकड़ के कहेंगे कि जा जहन्नुम में। पुलिस में नहीं आके आपको कह दे कानून शिकनी की थी, फलां की थी, तो बंदा इनकार कैसे करे? बंदे के पास कुछ नहीं होगा इनकार करने को। लेकिन उसके बाद जब अल्लाह ताला सारी बातें पूछ चुकेगा, फिर कहेगा कि जा, जैसे मैंने दुनिया में तेरे ऐबों को छुपाया था, आज भी मैं तेरे ऐबों को छुपाता हूँ। ये बात सुन के बंदे की जान में जान आएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन तुब्दु खैरन औ तुख्फूहु औ तअफू अन सुअन फ़इन्नल्लाहा काना अफूवन क़दीरा। पहले बुराई के छुपाने का हुक्म, अब नेकियों को ज़ाहिर करने का हुक्म। अपनी नेकी को भी ज़ाहिर कर सकते हैं, कौन सी? जिसमें दूसरे को रग़बत दिलाना हो। और अपनी नेकी को छुपा भी सकते हैं, कौन सी? जिसमें अपने नफ्स के मोटा होने का डर हो, रियाकारी और दिखावे का ख्याल हो, रियाकारी शोहरत वाली बात हो। रग़बत दिलाने के लिए इंसान अपनी ज़िंदगी के वाक़यात सुना सकता है। रग़बत दिलाने के लिए दूसरों के किस्से भी सुनाए जा सकते हैं। क्यों? कि इसके नतीजे में दूसरों को फ़ायदा होगा। हाँ, जो करना है वो क्या कि वह अवताफ़ अनसो, दूसरों की बुराइयों से तो बहरहाल दरगुजर ही कर लो। ना बुराई का जिक्र करो, लोगों के साथ अच्छे मामले रखो। और आप देखिए कि दोनों आयतों के एंड पे अल्लाह ताला की जो सिफात है ना, समीयन, अलीमन, अफूवन, कदीरन, ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला में ये पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह वाले अखलाक अपनाओ, लोगों को माफ़ कर दो, वो रब तुम्हें भी माफ़ कर देगा। और अपने आप को इस जगह पे रखो कि जहाँ तुम वाकई चाहते हो कि दूसरे भी तुम्हें रखें। अरबी का एक शेर है कि अपने दोस्त को चाहो मगर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हो सकता है कि कल वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। और अपने दुश्मन से बुग़्ज़ रखो मगर थोड़ा, क्योंकि हो सकता है कि कल वो तुम्हारा दोस्त बन जाए। ज़ुबान से निकली हुई बातें बाज़ दफ़ा इतने बड़े बड़े बैरियर बना देती हैं रास्ते में। दिल मान चुके होते हैं लेकिन फिर इंसान उस रास्ते पे चल नहीं सकता। इसलिए कोई भी मौका ज़िंदगी में आ जाए, बस उसको پیچھے رکھ دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کڑ کڑ کے جل جل کے اپنے آپ کو تنگ نہ کریں۔ جس کو آخرت کا غم لگ جائے گا وہ کبھی بھی پھر دنیا کی چیزوں پہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس کے اندر ایک دو بس بات اور کر کے اس ٹاپک کو ہم کلوز کریں گے، کہ کچھ چیزیں اس میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو یہ ساری باتیں بتا کر کیا بات بتانا چاہتا ہے کہ تمہیں رخصت تو ہے لیکن تم بہترین درجہ حاصل کرو۔ ان ساری باتوں کے علاوہ کچھ درجے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں برائی کو کھول سکتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ عام حالات میں کسی کی برائی کو نہیں کھول سکتے، نہیں کھولنا چاہیے۔ کوئی آپ اس کام پہ نامینیٹ نہیں کیے گئے کہ آپ سارے لوگوں کی برائیاں کھولیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کھول سکتے ہیں۔ مثلا نمبر ایک، جب کوئی آپ سے مشورہ مانگے، کسی کو بچی کی شادی کرنی ہے، لڑکا جو ہے وہ آپ کے نیبر میں رہتا ہے، لڑکی والے آ کے رشتہ کرنے سے پہلے آپ سے پوچھتے ہیں کہ دیکھیں نیبرز کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، بتائیے کہ آپ ہمسائے میں رہتے ہیں، کبھی اس لڑکے کی آپ نے کوئی برائی دیکھی، کوئی سنی، کوئی کی؟ تو پھر اس وقت اگر بالفرض آپ اس لڑکے میں کوئی خرابی دیکھتے ہیں تو کیا کریں گے؟ توبہ توبہ، کچھ نہ پوچھو، یہ انداز ہونا چاہیے؟ نہیں، نپے تلے، ٹھکے چھپے، آپ دیکھ لیجئے، آپ تھوڑی اور تحقیق کر لیں، بس آپ دعا کریں اللہ اس بچی کا معاملہ اچھا کرے، اس طرح کے جملے بولیں۔ یقین کریں بعض دفعہ ہمیں کوئی ایک کونا پکڑاتا ہے نا مشورے کا، تو ہم پھر اس کے آگے وہ خاندان کے پٹارے کھول دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ ایسا بھی نہ کریں، ٹھکا چھپا معاملہ رکھیں۔ اگر دوسری چیز ہے کہ کسی شخص سے آپ کا واسطہ پڑا، اس نے آپ کو نقصان دیا، مثلا آپ نے کسی کے ساتھ بزنس کیا، خوب دھوکہ دیا اس نے آپ کو، آپ کا مال لوٹ گیا، اب آپ کسی دوسرے شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسی شخص کے ساتھ بزنس کرنے والا ہے۔ اب پہلی صورت تو تھی کہ اس نے مشورہ کیا، اگر وہ آپ سے اس معاملے میں کر لے تو ڈھکے چھپے سے کہہ دیں کہ میرا تجربہ تو اچھا نہیں ہے، آپ ریسرچ کر لیں، کوئی ایسی حدیث سنا دیں جس میں ایسی بات کا تذکرہ ہو، ٹھیک ہے؟ بالفرض کوئی آپ سے نہیں پوچھتا، پھر کیا کریں؟ یہ بھی ایک مسئلے کی بات ہے، کوئی آپ سے پوچھتا ہی نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس چوائس موجود ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ مخلص ہیں یا آپ سمجھتے ہیں ایسا تعلق ہے کہ آپ کس بات سے فائدہ ہوگا، اور یاد رکھیں دوسرے بندے کو نقصان دینا مقصد نہ ہو، بس اس بندے کا رشتہ نہ ہونا آپ کی مراد نہ ہو کہ جو لڑکا خراب ہے، اپنی اس دوست کی بیٹی کو غلط لڑکے کے ہاتھ میں جانے سے بچانا آپ کی نیت ہو، تو ڈھکے چھپے لفظوں میں بات کر دیں، خود ہی کر دیں، ایسے سنا دیں باتوں میں، میں نے بزنس کیا تھا پھر ایسے ہو گیا، لیکن نہ ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں اپنے گھروں میں، اپنی ٹیبل ٹاکس پہ، اپنے بچوں شوہروں کے ساتھ جب آپ خاندان کو ڈسکس کرتے ہیں، شادیوں سے واپس آ کے دلہن ایسی تھی، اماں ایسی تھی، دلہا موٹا تھا، دلہن پتلی تھی، یہ قسم کے جملے بولنا چھوڑ دیں، یہ مسلمان کو زیب دیتے ہی نہیں ہے، اور کہاں کہ پھر کسی کے معاملات کو دوسری طرف لے کے جانا۔ تو اس ساری چیز کے ساتھ جب آپ کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو آپ مطلب خیر کے جو کام ہیں، تبدو خیرن کی بات ہے، اس کو آپ چھپا ہی نہیں سکتے۔ مثلا کوئی نیکی کا کام ہے، کوئی اذان دے رہا ہے، کیا چھپا سکتا ہے؟ درس دے رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، نماز جنازہ پڑھا رہا ہے، تو ایسی نیکیاں جس کے اندر انسان دوسروں سے چھپا سکتا ہی نہیں ہے، ان کو کرنے میں دل میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ امام رازی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خیر کی بہت ساری قسمیں ہیں لیکن دو قسموں میں ان کو بانٹ سکتے ہیں، ایک ہے صدق مال حق، حق کے ساتھ سچائی برتنا، اور دوسرا ہے خلق مال خلق، مخلوق کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے؟ کہ ان کو نفع پہنچانا، اور دوسرا یہ کہ اپنے ضرر سے ان کو دور رکھنا۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو مختلف جگہ پیش کیا گیا، لیکن ہم اسی پہ اکتفا کریں گے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہاں تک تلاوت سنیں گے۔
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا